నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేష్ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. జయతి జయతి దేవో దేవకీ నందనోసు జయతి జయతి కృష్ణ వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతి జయతి మేఘశ్యామల కోమలాంగౌ జయతి జయతి పృథ్వీ భారనాశౌ ముకుందౌ. వి ఆర్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ 9th క్యాంటో 18వ అధ్యాయ నవమే స్కందక పహలా శ్లోక్ ఇధర్ క్యా దూసరా లిఖా హై పహలా లిఖా దూసరా ఠీక్ హై పహలా పఢ్ లేతే హై ఉస్కా తాత్పర్య నహీ హై దూసరా పఢేంగే వాపస్. శ్రీ శుక ఉవాచ యయర్యతి సంయాతి రాయతిర్ వియతి కృతి షడిమే నహుషస్యాసన్ ఇంద్రియాణీవ దేహినః. శుకదేవ గోస్వామిని కహా హే రాజా పరీక్షిత్ జిస్ తరహ దేహధారీ ఆత్మా కే చహ ఇంద్రియా హోతీ హై ఉసీ తరహ రాజా నహుష్ కే చహ పుత్ర తే జిన్కే నామ తే యతి యయాతి సంయాతి ఆయతి వియతి తథా కృతి. అభి దూసరా శ్లోక హై. రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా దత్తం తత్పరిణామవిత్ యత్ర ప్రవిష్టః పురుష ఆత్మానం నావబుధ్యతే. రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా దత్తం తత్పరిణామవిత్ యత్ర ప్రవిష్టః పురుష ఆత్మానం నావబుధ్యతే. రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా దత్తం తత్పరిణామవిత్ యత్ర ప్రవిష్టః పురుష ఆత్మానం నావబుధ్యతే. ఆత్మానం నావబుధ్యతే. రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా వైష్ణవీస్. రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా రాజ్యం నైచ్ఛత్ యతి పిత్రా రాజ్యం రాజ్య నా ఐచ్ఛత్ స్వీకార్ నహీ కియా యతి హి జ్యేష్ఠ పుత్ర యతి నే పిత్రా అప్నే పితా ద్వారా దత్తం దియా గయా తత్ పరిణామవిత్ రాజా కే సమాన్ శక్తిశాలి హోనే కా ఫల్ జాన్తే హుయే యత్ర जहां प्रविष्टः घुसकर पुरुषः व्यक्ति आत्मानं आत्म साक्षात्कार न नहीं अवबुध्यते गंभीरता पूर्वक ग्रहण करके समझेगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जब कोई राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने उसे ही सौंपा था। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार मानव सभ्यता का मूल उद्देश्य है और जो लोग सतोगुणी हैं तथा जिनमें ब्राह्मणी गुणों का विकास हुआ होता है वे इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। सामान्यतया क्षत्रिय ऐसे गुणों से संपन्न होते हैं जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने तथा इंद्र तृप्ति भोगने के अनुकूल होते हैं, किंतु जो लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े रहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाते। निस्संदेह वे आत्म साक्षात्कार में आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करते हैं। यहां विशेष उल्लेख हुआ है कि यदि कोई राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है विशेषकर वर्तमान युग में तो मानव सिद्धि उसके हाथ से जाती रहती है। तो भी यदि कोई श्रीमद् भागवत को सुने तो सर्वोच्च सिद्धि पा सकता है। यह सुनना नित्यम भागवत सेवया कहा गया है। महाराज परीक्षित राजनीति में लिप्त थे किंतु चूंकि अपने अंतकाल में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनी अतएव उन्हें सरलता से सिद्धि मिल गई। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभि ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। कोई चाहे सतोगुणी हो या रजोगुणी अथवा तमोगुणी यदि वह नियम पूर्वक किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुनता है तो वह भव बंधन से छूट जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में इतने गूढ़ तत्व बताए गए हैं कि कभी कभी भागवत के अंदर ऐसे एक विरोधाभास देखने को मिलेगा व्यक्ति को, लेकिन भागवत को गहराई से पढ़ने से वो विरोधाभास को हम नष्ट कर सकते हैं और सही समझावट प्राप्त हो सकता है। जैसे आज के प्रसंग में पढ़ रहे हैं कि याति के 6 पुत्र थे, उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र यति, उनको पिताजी ने राज्य सौंपाया। तो अगर किसी बेटे को राज्य सौंपा जाता है, कौन है इस दुनिया में जो नहीं स्वीकारेगा? इस दुनिया में कोई भी हो खुशी से स्वीकारेगा, सलाम मारकर ले लेगा तुरंत खुशी से, क्योंकि बड़े राज सिंहासन की प्राप्ति हो रही है। इतने लोग उन उत्सव मनाएंगे, जब मुकुट पहनाया जाता है उनको, लोग फूल की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं, बड़े रथ के ऊपर बिठा कर लेके जाएंगे और सब लोग उनकी बात सुनने वाले हैं। एक बार ताली बजाओ 10 लोग भाग कर आते हैं आपकी बात सुनने के लिए। तो इस तरह की राज्य पद कौन है इस दुनिया में जो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए? लेकिन इधर बताया जा रहा है कि यति राजा ने मना कर दिया, बोला कि हमको राज्य पद अभी नहीं चाहिए। और उनके मन में क्या धारणा था, क्या वो नामुमकिन था राज्य चलाना? उनको कायर थे, डरपोक थे क्या कि हम अगर राज्य ले लेंगे तो लड़ाई में मर जाएंगे? ऐसा कुछ डर नहीं था उनको। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ कमजोरी थी, निपुणता नहीं था कि वो राज्य नहीं ले पाए। वो ज्येष्ठ पुत्र थे, योग्य थे, सब तरह के लक्षण उनके अंदर दिखाई दिया राजा होने के लिए। इसलिए आप देखेंगे जब एक राजा को चुना जाता है, अनेक बुद्धिमान, वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध पुरुषों को बुलाकर पूछा जाता है कि किसको राजा बनाना चाहिए। तो राजा भी हो, उनके पुत्र भी हो, फिर भी राजा अपने पुत्र को राजकुमार करके घोषणा नहीं करता था, उनको अगले राजा नहीं बनाता था, जब तक अनेक ऋषि मुनि मिनिस्टर लोग, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मणों का बोर्ड होता था, तो वो लोग आकर चुनते थे कि कौन राजा बनने के लिए लायक व्यक्ति है, तो उसके बाद ही उनको चुनाया जाता था। क्योंकि जो राजा बनने वाला है भविष्य में, उसको धर्मपरायण होना चाहिए, सर्वप्रथम वो चरित्रवान जीवन जीना चाहिए वो। राधा माधव की जाए, देखिए भागवत के पहले स्कंद में एक श्लोक है, अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। तो कली को परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिया जिधर द्यूत क्रीड़ा चलता है, लोग नशा पान करते हैं, अवैध संग करते हैं। द्यूतं पानं स्त्रिया, सोना का मतलब जो मांस खाते हैं, इन स्थानों में जाकर तुम जियो करके महाराज परीक्षित ने कली को 4 स्थान दिया, स्थान आने कलये ददौ। उसके आगे के श्लोक में भागवत ने बताया है कि खास करके जो नेता होते हैं इस दुनिया में, भौतिक नेता हो, आध्यात्मिक संस्था के नेता हो, कोई राजा हो, कोई पिता हो, कोई भी सम्मान के लिए योग्य पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, उनको इन 4 चीजों से वो दूर रहना चाहिए। ये 4 चीज उनको वर्जित है, अगर ये 4 चीजों को वो छोड़ता नहीं तो ऐसे व्यक्ति डूब जाएगा इस दुनिया में, संसार में, ऐसे बोला गया है। जैसे भी मांस खाने का मतलब, हम बोलेंगे हम मांस नहीं खाते हैं, मांस खाने का ये भी मतलब है अहंकारी व्यक्ति होना, अहंकारी होना, क्योंकि ये मांस खाने का मतलब है परजीवों को क्लेश देना इस दुनिया में। और क्यों एक नेता राजा क्लेश दे सकता है? जैसे राजा के अंदर बल है, शक्ति है, उस शक्ति को लेकर स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए, स्त्रियों की बलात्कार नहीं करना चाहिए। मंदिरों में देखा जाता है कि मुगलों के जमाने में कहीं भी कोई भी खूबसूरत स्त्री को देख लिया उन्होंने वो तुरंत लेकर शादी कर लेते थे, चाहे वो ब्राह्मण की भी पुत्री हो। ऐसे है तो इस तरह एक राजा अपने शक्ति को गलत प्रयोग कर सकता है। ध्रुव महाराज भी इतने बुद्धिमान राजा भी थे और साक्षात विष्णु की दर्शन भी हो चुका था, घर वापस लौटा आ गए थे और उनको राजा भी बनाया गया। लेकिन उनके भाई उत्तम की हत्या हो गई एक यक्ष के हाथ से, तो यक्षों से कुपित हो गए ध्रुव महाराज। धर्म तो था ही उनका कि यक्षों के साथ लड़ाई करना और उनको एक सबक सिखाना, वो सब सही था। लेकिन यक्षों के साथ लड़ते लड़ते इतने उत्तेजित हो गए, अतिरोष आ गया उनके अंदर कि वो उस अवस्था में वो एक तरह का देहात्म बुद्धि में पड़ गए। वो अपने भाई को ममता के कारण अपना मानकर ये लोगों ने मार दिया करके उनके ऊपर इतना क्रोध किया कि सारी यक्षों के वंश को ही मिटाना चाहते थे वो। इसके कारण स्वयं मुनि आकर उनको उपदेश देते हैं, सही उपदेश देकर उनको बताते हैं ध्रुव इसको छोड़ दो अभी। इस तरह मांस खाना जो बोलते हैं, मांस खाने का मतलब इतना ही नहीं है कि मछली नहीं खाना, मटन नहीं खाना, ठीक है। लेकिन पर जीवों को अनावश्यक रूप से उनको क्लेश देना, क्योंकि इस दुनिया में आए हुए सब जीवों को ऑलरेडी बहुत कुछ क्लेश हैं, त्रिविध ताप हैं, और उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है दूसरों को। लेकिन राजा का कर्तव्य है कि ऐसे जीवों को दंड देना, जैसे अगर किसी ने खून किया है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, अगर किसी ने चोरी किया है तो उसके हाथ काटा जाता है, तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको जेल खाने में डाला जाता है। तो ये राजा का कर्तव्य है ही जरूर, लेकिन अनावश्यक रूप से दूसरे परजीवों को क्लेश नहीं देना, ये मांस खाना है। इस तरह जुआ खेलना जो है, जुआ खेलना का मतलब है पैसे को डालकर, थोड़ा पैसे को डालकर और पैसा निकालने के लिए अनेक लोग द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं ऐसे। तो राजा जो होता है उसको खास करके द्यूत क्रीड़ा मना किया गया है। कारण क्या है, द्यूत क्रीड़ा में नशा चढ़ जाता है। अगर किसी ने पहले थोड़ा पैसा खो बैठा तो रोएगा, लेकिन दूसरी बार डालते समय थोड़ा दुगुना पैसा आ गया तो नशा चढ़ जाता है, लगता है कि उसको अभी मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, खरबपति बनूंगा, इस तरह सोचकर बहुत बहुत पैसा डालकर वो सब धन दौलत को खो बैठता है। ऐसे राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज को हुआ था ये द्यूत क्रीड़ा में, ऐसे तो वो मना किया है इस तरह। और द्यूत क्रीड़ा इसका दूसरा मतलब क्या है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है वही राजा बन सकता है जो उसने राज परंपरा में जो सुना है उसको ही दूसरों को देना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए, मनमानी बात भी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई जैसे वेण राजा था, वो मनमानी कर रहा था वो, क्योंकि ब्राह्मण लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। वेण राजा ने बोला उनको, अरे मूर्ख ब्राह्मण, आप लोग देवताओं की पूजा कर रहे हो, मैं हूं भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए मैं भी भगवान ही हूं, बोला उन्होंने, हमारी पूजा तुमको करना चाहिए, देवताओं की पूजा क्या कर रहे हो, इस तरह उनको पूछा। तो सब यज्ञ को बंद कर दो सारे देश में, सब लोग आकर मेरे लिए यज्ञ करो। इस तरह इसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंस, इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस था उसका। तो उसकी खुद की पूजा के लिए उसने भगवान की पूजा आराधना को बंद कर दिया उसने, तो वेण राजा ने ऐसे। तो अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण आकर वेण राजा को, बहुत क्रोध था उनके अंदर, लेकिन प्रेम से बोले, हे वेण राजा समझो, ऐसे अपने दांत चबाते हुए ऐसे बोलने लगे कि क्रोध भी था उनके अंदर लेकिन प्रकट नहीं किया उन्होंने। अरे मूर्ख राजा, तुम अगर मूर्ख नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मन ही मन सोचा उन्होंने, सोचा कि अरे राजन, गायों को बचाना भगवान विष्णु की खुशी के लिए यज्ञ करना, शास्त्र में दिए हुए विधि विधानों के अनुसार जनसाधारण को जन कल्याण करना, भगवान से जोड़कर उनको भगवान की भक्ति में जोड़कर, तो इस तरह के कार्य करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन अगर तुम इस तरह पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दोगे सेक्युलरिज्म के नाम में, आजकल भी बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम नरक में जाओगे अपने प्रजा के साथ। तो इसलिए तुम सही पथ को पकड़ो, सत्य पथ को पकड़ो। लेकिन वो तो समझने वाला नहीं था, बुद्धिमान नहीं था वो। तो इस तरह वो अपने अपने ही खुद का फिलॉसफी निकाला उसने, बोला कि माता पिता गुरु और राजा सब लोग भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वो बोला कि क्योंकि मैं भगवान के प्रतिनिधि हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बोला उसने ऐसे। तो इस तरह ये स्पेकुलेशन है, इस तरह मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है ये नशा जो होता है, नशा पान करना। देखिए आजकल के जमाने में आप होटल में जाएंगे, कुछ कुछ बड़े होटल में जो बोलने के लिए भी हमें संकोच होता है, किस परिवार के लोग जाते हैं होटल में, जैसे जो अच्छे खानदान में जन्मे, वैश्य परिवार में जन्मे लोग जो होते हैं पुरुष लोग, एक और वो तो होटल में जाकर आजकल भोजन के साथ साथ शराब भी पीते हैं, लेकिन माताओं के लिए कोने में ये कॉर्नर रखा है थोड़ा कर्टन वगैरह डालकर, उधर जाकर माताएं जाती हैं, उनको स्टेनलेस स्टील ग्लास में लिकर दिया जाता है, तो ताकि उनको बुरा आना लगे कि हम शराब पी रहे हैं। उनको छोटा छोटा स्टेनलेस ग्लास है, अलग अलग नाम भी लिखकर रखते हैं। तो यही वैश्य परिवारों में जन्मे, अच्छे अच्छे खानदान में जन्मे लोगों को पुरुष लोग तो खुला खुला पीते हैं, लेकिन स्त्रियों को एक कोने में उनको लेके जाकर उनको भी पिलाया जाता है, वो पीती है वो भी है। तो इस तरह ये शर्म की बात है कि जब अच्छे खानदान में जो राधा कृष्ण की पूजा करने वाले अगर इस तरह भगवान की पूजा को छोड़कर इस तरह के नशे में गर्व, क्योंकि पैसा है करके लोग उसकी दुष्प्रयोग करते हैं इस तरह, तो ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह नशा से क्या होता है, एक व्यक्ति एक चरित्रवान जीवन जी नहीं पाता है। अगर कोई शराब पिया है कोई व्यक्ति, वो शराब पीने के बाद अपने पूरा बाहरी दुनिया की ये शुद्ध बुद्ध पूरा खो बैठता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो कुछ भी करेगा नशे में, किसी को मारेगा, कामुक बनेगा, नहीं तो दुष्प्रयोग करेगा कुछ भी। इसलिए ये नशा चढ़ाने वाली पदार्थों को, नशीले पदार्थों को एक इंसान को लेना नहीं चाहिए। दिस इज अगेंस्ट ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, इंसान को थोड़ा बहुत तपस्या करना चाहिए अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए, क्योंकि अगर कोई इंद्रिय के संयम ही नहीं चाहता कुछ भी करो। जैसे मुंबई में एक बड़ा धनी, एकदम धनी बिजनेसमैन था, उसको शादी हो गया, धर्मपत्नी थी, बच्चे भी थे, दो चार बच्चे भी थे, अचानक उसके मन में इच्छा हो गया कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उसके साथ शादी करना है। ऐसे पैसा तो था उसके पास, तो एक्ट्रेस के साथ कनेक्ट किया, उसको बुलाया, होटल में बुलाया, जाकर मिला और अपने अपनी धर्मपत्नी को भगा दिया, चला उसको निकाल दिया, डाइवोर्स कर दिया उसको, चले जाओ तुम्हारे पिताजी के पास। बच्चों को भी निकाल दिया, अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस को लाया घर में, उसका स्विमिंग पूल था घर में, बड़ा घर था, बड़े बगीचे थे, बहुत बड़ा कंपाउंड था, तो सोचा कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जीवन में भोगूंगा और अच्छा जीवन जीऊंगा। लेकिन कुछ ही दो तीन हफ्ते के अंदर पता चल गया उसको कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस के अनेक बॉयफ्रेंड्स हैं उसके, बाकी उसका चरित्र बहुत गंदा है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस का। तो सोचा कि अरे देखने में तो इतना खूबसूरत दिखती थी लेकिन इसका चरित्र शुद्ध नहीं है, ये तो इतने अलग अलग पुरुषों के साथ घूमती है, तो उसको अचानक डाइवोर्स करने की मना आया। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस को पता चल गया, वो उसके वाइफ को, ये उसने सोचा कि अगर इसको डाइवोर्स कर देगा था इसका मैं पैसा नहीं मिलेगा मुझे, तो उसने सोचा कि बहुत बहुत पैसा लेकर ही मैं निकलूंगी, करोड़ों रुपया लेकर, क्योंकि शादी किया इसने 2-3 हफ्ते के लिए है, अब निकालना पड़ेगा पैसा। तो वो अपने लॉयर के पास गया, वो बोला कि इसको एक भी पैसा नहीं दूंगा, दूंगा भी तो कुछ लाख देकर निकाल दूंगा उसको। तो वो कर रहा था, इसके बीच में बॉलीवुड एक्ट्रेस ने क्या किया, कुछ गुंडों के द्वारा अपने ही पति को मारने के लिए योजना किया उसने, क्योंकि उसने सोचा कि मर जाएगा तो पूरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो इसको जब पता चल गया तो इसने भी कुछ बॉडीगार्ड्स रखने लगे। तो एक ही घर में रहते हैं पति पत्नी दोनों को अलग अलग बॉडीगार्ड्स, पत्नी के लिए बॉडीगार्ड और पति के लिए दो तो बॉडीगार्ड उनके साथ। तो एक ही बड़े महल में जीते हैं, अभी वो डाइवर्स भी नहीं कर पाया, मिलजुल कर भी नहीं रहते हैं, और दोनों के पास बॉडीगार्ड्स हैं, बड़े बड़े कुत्ते भी हैं, पता नहीं कौन किसको मारेगा पहले, ऐसे हैं, इस तरह जी रहे हैं अभी भी। ये तो सत्य कहानी है। इस तरह बोलने का मतलब क्या है, स्त्री संग से, अवैध स्त्री संग से एक व्यक्ति दूषित हो जाता है। उसके पत्नी भी थे, पत्नी सही पत्नी थी, बच्चे भी थे, लेकिन मूर्ख इस तरह के गलत दिशा में जाकर फंस गया वो। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी राजा को बड़ा पदवी दिया जाता है कि ये चार विषयों में कभी कभी देखा जाता है कि वो लग जाता है, पतन हो जाता है उसको, क्योंकि पैसा है, पदवी है, शक्ति है, मान सम्मान है, सब लोग उसको मानते हैं, जय जयकार होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने के लिए डरते हैं लोग, हम कुछ भी करेंगे, कौन क्या पूछेगा हमको, इस तरह का नशा चढ़ जाता है। इसलिए जो लोगों को राजा का पदवी दिया जाता है, सर्वप्रथम उनको ये चार नियमों को पालन करने के लिए सिखाना चाहिए। कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की उतना जरूरत नहीं है जितना कैरेक्टर की जरूरत है। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए और भगवान के भक्त होना चाहिए राजा। अगर भगवान का भक्त नहीं होगा जरूर अपने पदवी का दुष्प्रयोग करेगा वो, क्योंकि भगवान का भक्त जो होगा समझेगा कि सारे दुनिया गोपाल के हैं, सब पैसे भगवान के हैं, लक्ष्मी भगवान की धर्मपत्नी है, तो उसका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, अगर कोई कथाकथित धार्मिक व्यक्ति हो, जैसे पुरुषार्थ बोलते हैं हम, पुरुष का मतलब है जीव, अर्थ का मतलब है उसको लाभदायक, उसको अर्थ बोलते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब है कोई धर्मकामी, अर्थकामी, कामकामी, मोक्षकामी, चार तरह के कामी हैं। तो धर्मकामी क्यों बोलते हैं, धर्म भी करते हैं भोग प्राप्त करने के लिए। लोग, राजा लोग भी कभी कभी यज्ञ वगैरह करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो धन प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए करते हैं ऐसे भी। और अर्थकामी का मतलब है अर्थ चाहता है, कामकामी का मतलब विविध तरह के कामों को भोगना चाहता है, और जब तंग आ जाता है मोक्ष चाहता है कोई। तो इस तरह जो पदवी, कोई पदवी दिया जाता है उसको, क्योंकि सुख सुविधा ऐश्वर्य ये सब प्राप्त होता है, उसको दुष्प्रयोग करने का आदत तो इस दुनिया में रहता ही है। इसलिए स्वयंभू मनु जब थोड़े वृद्ध हो गए थे और उनको इच्छा था कि हम राज्य को छोड़कर हम वानप्रस्थ ले, हम अभी भगवान की भजन करें, तो उनके लिए पुत्र चाहिए था जो चलाएगा राज्य, लेकिन उत्थानपाद का समय हो गया, चले गए। उसके बाद प्रियव्रत राजा को पकड़ने के लिए गए जंगल में, गंधमादन पर्वत में प्रियव्रत राजा बैठा है, वो ब्रह्मचारी बनकर अपने भजन में आनंद में है वो। तो स्वयंभू मुनि गए उनके पास, बोला कि हे बेटा देखो मैं वयोवृद्ध हूँ, अभी रिटायरमेंट लेना मेरा काम है, अभी तुम्हारा काम ये राजा का बिजनेस को चलाना, तुम आ जाओ वापस लौट जाओ, तुम राज्य चलाओ और मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। लेकिन प्रियव्रत राजा को इच्छा नहीं था, मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है, आप ही रहो राजा रहो, बस हमको छोड़ दो। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि स्वयंभू मनु राज्य को त्यागना चाहता है, प्रियव्रत भी नहीं स्वीकारना चाहता है, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम राजा बनो, तुम राजा बनो, ऐसे है। तो कोई भी दुनिया वाला सोचेगा, अरे अब दोनों को नहीं अच्छा तो मुझे दे दो है कि नहीं वो क्यों दोनों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान है। तो क्या बुद्धिमत्ता है वो इधर बताया जा रहा है इस श्लोक में, इधर इधर बताया गया है। इधर हे राजा परीक्षित, जिस तरह है इधर है, जब कोई राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। इसका मतलब क्या है, क्यों आत्म साक्षात्कार नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसको जो मान सम्मान यश और सुख सुविधा ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति जब होता है उसके अंदर देहात्मा बुद्धि बढ़ जाता है। जितना देहात्मा बुद्धि बढ़ता है, देह को ही आत्मा मानना और मैं और मेरा ये बहुत बढ़ जाता है उसके, सोचता है कि खास करके अभी जो ऐश्वर्य जो है उससे शारीरिक चेतना बढ़ता है और मान सम्मान से एक व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। तो इस तरह इसके कारण आत्म साक्षात्कार को समझ नहीं पाता हो। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने उसको उसे ही सौंपा था। तो उताना पद ने स्वयं ने क्या किया, सीधा जाकर ब्रह्मा जी को मिला उन्होंने कि मेरा बेटा स्वीकार नहीं कर रहा है, आप आकर उसको थोड़ा समझाइए। तो जब ब्रह्मा जी खुद आ गए अपने हंस वाहन में ऋषि मुनियों के साथ, तो उस समय प्रियव्रत को स्वीकारना पड़ा राज्य। ही रिलेक्टेंटली एक्सेप्टेड द पोजिशन। व्हाट इज रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए भी उन्होंने स्वीकारा राज्य का पदवी, क्योंकि नारद मुनि ने भी बोला उनको, नारद मुनि के पिताजी ब्रह्मा जी आकर बोले, नारद मुनि ने बोला तो स्वीकारा उन्होंने। उधर एक शब्द आता है विषय विषम विष जलाशयाश उपर राम ऐसे बोला गया। इसका मतलब क्या है, विषय का मतलब है डेंजरस, विषय विषम विष, विष का मतलब है पॉइसन। स्वयं मनो गेव अप द पॉइसनस पॉलिटिकल एंड डेंजरस ओशन ऑफ डिजायर्स विच कम्स अलॉन्ग विद द पोजिशन ऑफ अ किंग एंड ही गेव इट ऑल अप एंड ही बिकेम वेरी जॉली आफ्टर दैट। इस तरह बोला गया कि विषय जैसे बहुत कूटनाटी विविध तरह के राजनीति कूटनीति इत्यादि में एक राजा को रहना पड़ता है, उसको त्याग कर स्वयं मनो उसको उठाकर दे दिया प्रियव्रत को और खुद वो मुक्त हो गए उससे, और वो बहुत आनंद से वानप्रस्थ लेकर चले गए वो स्वयं मनो। ऐसे इस तरह उधर बताया गया है ऐसे। तो पुराने जमाने में राजा लोग इस तरह पदवी को स्वीकारने के लिए बहुत हिचकिचाते थे। इसका कारण है दानम जनम सुंदरम इत्यादि से आने वाले आसक्ति, तो इसको डरते थे वो, उस आसक्ति में हम फंस न जाए, और अगर हम फंस जाएंगे तो हमारे हमारा मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह वो डरते थे। लेकिन इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति है उसको कर्तव्य बनता है कि इस तरह के पदवी को स्वीकारना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को गृहस्थ लोग अपने घर में बुलाते हैं प्रसाद प्राप्त करने के लिए, तो गृहस्थों का धर्म है कि ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को अपने घर में बुलाकर प्रसाद परोसे, उससे उनका प्रगति होता है। अब प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी बार बार गृहस्थों के घर में जाते रहे प्रसाद प्राप्त करने के लिए, उनको जाना नहीं चाहिए बोलते हैं। तो आप पूछेंगे प्रभु जी ब्रह्मचार्य को बोला जाता तुम मत जाओ, अब गृहस्थों को बोला जाता तुम्हारे धर्म में बुलाओ, ये कैसे हो सकता है दोनों, वो आओ आओ बुलाएंगे नहीं नहीं बोलेंगे तो धर्म हो नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी जा सकते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, कभी कभी एकाध बार जा सकते हैं, थोड़ा प्रसाद ला सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग इस तरह बुलाने से ही उनका वो धर्म परायण होते हैं। अगर कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी को बुलाएंगे मेरे घर में आइए, अगर ब्रह्मचर्य सहने से आते हैं कि नहीं आते हैं वो परवाह नहीं, लेकिन बुलाया उन्होंने, उससे उनका धर्म हो जाता है उससे। तो इसी तरह राजा का पदवी जो दिया जाता है, कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं गीता में, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तितो जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। बताते हैं कि अर्जुन तुम डरो मत राज्य को स्वीकारने के लिए, क्योंकि जनक महाराज जैसे बड़े राजा जो आध्यात्मिक जीवन में एकदम प्रगतिशील थे, वो जनक विदेह बोला गया है। विदेह का डबल मीनिंग है, एक मीनिंग है विदेह प्रदेश का राजा थे वो, और दूसरा मतलब है जो अपने भौतिक चेतना को खो बैठे थे, बाहर की शरीर की देह स्मृति नहीं यार बोला गया ना, उनको देह स्मृति नहीं था उनका, इसलिए उनका नाम है विदेह। ऐसे राजा ने, ऐसे जनक महाराज ने भी राज्य को स्वीकारा था। इसका मतलब क्या है, तुम भी जनक महाराज जैसे राज्य को स्वीकारो, लेकिन बंधन में मत पड़ो। तुम राज्य को ऐसे स्वीकारो हरि गुरु वैष्णव गुरु साधु शास्त्र इत्यादि के आदेशानुसार, गुरु साधु शास्त्र के उपदेशानुसार तुम जीवन चलाओ। इस तरह चलाओगे तो तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, इस तरह कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। तो बड़े बड़े मुक्तात्मा भी राज्य को स्वीकारते हैं दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए तुमको स्वीकारना चाहिए, ऐसे कृष्ण बताते हैं। इतना था कि कृष्ण अपने बारे में भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यदि ह्यहम न बरते यम जातु, ये बताते हैं कि अगर मैं भी राज्य को नहीं स्वीकारूंगा, मैं द्वारकाधीश नहीं बनूंगा, तो मैं कैसे दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, इसलिए मैं राजा बना, ऐसे भगवान अपने बारे में भी बोलते हैं। तो गीता में जनक महाराज का उदाहरण और अपने उदाहरण दोनों देते हैं भगवान, कि एक आदर्श राजा है, एक आदर्श राजा हो, नहीं तो कोई बुद्धिमान भी हो इस तरह, उनको जब इस तरह का जिम्मेदारी दिया जाता है उसको स्वीकारना चाहिए, लेकिन इस भावना के साथ स्वीकारना चाहिए कि मैं पदवी का गलत प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में गलत प्रयोग करने से कोई बंधा जाता, खुद भी बंधा जाता है, दूसरों को भी कुछ उससे लाभ नहीं है, दूसरे लोगों को भी। देखिए उस जमाने में भी होता था कभी कभी, कोई राजा लोग जो पदवी स्वीकारने के बाद नशे, जैसे सुग्रीव ने राजा बना, तो वो तो शराब पी रहा था, स्त्री गमन कर रहा था, वो हमेशा बिस्तर में लेटा था, वो कभी राज्य के जिम्मेदारियों को स्वीकारा ही नहीं। इस तरह हो सकता है कि कोई राजा बनता है, जन कल्याण के लिए कुछ नहीं करता है, वो मंदिर नहीं बनाता है, लोगों को सदुपदेश नहीं देता है, तो ब्राह्मण के द्वारा लोगों को सिखाता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और जनक लोगों के लिए पानी नहीं, लोगों के लिए जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था नहीं, जाने की यज्ञ नहीं करता है, इस तरह के वर्णाश्रम के, वर्णाश्रम को लेकर लोगों को बांटता नहीं है इस तरह, तो ये सब नहीं किए बिना, ये सब कभी कभी राजा लोग पदवी प्राप्त करने के बाद खुद के भोग विलास में जीवन जीते थे, और ऐसे लोगों, ऐसे राजाओं को आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता है। तो इसके एकदम विरुद्ध थे पृथु महाराज और अम्बरीश महाराज और युधिष्ठिर महाराज, ऐसे राजा लोग। ऐसे युधिष्ठिर के बारे में पढ़ते हैं भागवत में, वो ऐसे जब राजा बने, इतना यश प्राप्त हुआ युधिष्ठिर महाराज को, चार ही यज्ञ किया उन्होंने, लेकिन इंद्र से भी ज्यादा जगत प्रसिद्ध हो गए वो। तो प्रभुपाद उधर पूछते हैं, इंद्र को 100 यज्ञ करना पड़ा इंद्र बनने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कितने यज्ञ किया, 4 यज्ञ करके इंद्र से भी ज्यादा मशहूर हो गए, कैसे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी, तो इतने प्रसिद्ध बन गए वो। और अनेक लोग इनकी, इनको कर देने के लिए आते थे और उनको फूल चढ़ाते थे और बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कुछ भी इन चीजों को परवाह नहीं किया, सदा उनका मन रमता था भगवान में, भगवान में और भगवान के कैंकर्य करने में, भगवत कैंकर्य करने में और भगवान की भक्ति भाव में, ऐसे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज की महल ही बन गया भगवान का मंदिर। यूयम हि लोके बत भूरी भागा लोकम पुनानाम मुनयो भियंती येषां पुनानाम बसते ही साक्षात परम ब्रह्म गूढ़ मनुष्य लिंगम। ऐसे एक श्लोक आता है, यूयम हि लोके बत भूरी भागा। इसमें बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज के जो माया सभा था इंद्रप्रस्थ में, उधर आकर भगवान कृष्ण बहुत समय रहते थे। ऋषि मुनि लोग जंगल में बैठकर ध्यान लगाने वाले भगवान के ऊपर, उन्होंने सोचा कि हम देख नहीं पाएंगे भगवान को, चलो अभी हम राजा युधिष्ठिर के इसमें महल में चले जाते हैं, उधर हमें मिलेंगे कृष्ण, इस तरह सोचकर वो आते थे। ऐसे इस तरह वो थे राजा, लेकिन भोग विलासी नहीं थे, वो कृष्ण विलासी थे, ब्रज विलास थे, वो वृंदावन विलास थे, नहीं तो कृष्ण में विलास करते थे। इसके कारण कृष्ण उनके निकट ही रहे हमेशा। तो ऋषि मुनियों को आना पड़ा उनके महल में उनको कृष्ण को देखने के लिए। इस तरह के राजा थे युधिष्ठिर महाराज। तो पृथु महाराज के बारे में भी सुंदर वर्णन है भागवत में, अपने सब प्रजा को बुलाकर वो पुरस्कार देते थे उनको, जिन्होंने अच्छा सेवा किया उनको, उनको सदुपदेश देते थे, उनको अच्छी तरह भोजन और जीवन यापन के लिए व्यवस्था करते थे, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे करना उसका उपदेश भी वो देते थे। उनके उपदेशों को पढ़ेंगे, सर्वप्रथम बोलते हैं कि इस दुनिया में एक ईश्वर है जो सारे दुनिया को संभालते हैं, इस तरह बोलकर उधर से शुरू करते हैं। उनको मालूम था कि उसी सभा में कुछ नास्तिक लोग भी होंगे, उनको परवाह नहीं किया, उन्होंने सत्य बात कहा पृथु महाराज ने ऐसे। और लोगों को उन्होंने ऐसे सिखाया कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा करना चाहिए। तो इस तरह पृथु महाराज के चेतना का आप देख सकते हैं। जब भगवान विष्णु की दर्शन होता है पृथु महाराज को, पृथु महाराज बताते हैं विष्णु को, एक सुंदर श्लोक है, वरान विभोस्त्वत् वरदेश्वराद्भुतः कथं प्रणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि संति देहिनाम तानीश कैवल्यपते वृणे न च। हे भगवान, आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या वर चाहिए, आप तो वरद ऋषभ हैं, अनेक वर आप प्रदान करने के लिए सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ भौतिक प्राप्ति नहीं मांगने वाला हूं, इतना तक कि हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ये बताते हैं, ये नारकाणाम अपि संति देहिना, ये नरक में जीने वाले लोगों के लिए भी स्वर्ग मिल जाएगा भविष्य में, ये बड़ी बात नहीं है, ये क्या नारकीय भोग है, हम नहीं चाहते, आप तो कैवल्य पति हैं, आपसे कैसे मांगेंगे। तो भगवान विष्णु ने पूछा उनको, अच्छा उसका मतलब आपको कैवल्य चाहिए, ब्रह्म में लीन होना चाहते हो। तो वो बोले, ना काम ये नाथ तदप्यहम क्वचिन, वो भी नहीं चाहिए हमको, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा नहीं है। क्यों? नयत्र युष्म चरणाम्बुजासव महत्तमांतर्हृदयन्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुतमेशमे वरैहि। बताते हैं, हे भगवान, ब्रह्म में जाना भी मैं इच्छा नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म में आपकी कथा नहीं होता उधर, आपकी कथा की मधु की प्रवाह उस ब्रह्म ज्योति में नहीं होता, उधर सिर्फ ओम शांति 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 ऐसे करते हैं बस, दूसरा कुछ नहीं है उधर परम ज्योति में, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। अभी हाल ही में मैंने सुना, परम पूज्य रानाथ महाराज उधर गए थे हरिद्वार में, उधर अनेक योगियों का ग्रुप है, 80-100 लोग आए थे, सब योगी बाबा है, दाढ़ी है, लंबे जटा है उनका, सब आकर बैठे हैं, उनको क्लास देने वाले थे। तो उन्होंने शुरू किया, ओ ऐसे बोलते रहे लंबा, सब योगी को बहुत अच्छा लगा, ये तो हमारा ही आदमी है, सबको वो बोल रहा है, सब लोग खुश हो गए। ओ मुद्रे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ऐसे बोले। उसके बाद कृष्ण लीला बोला उनको सबको। क्योंकि वो लोग शांति चाहने वाले लोग हैं, उनको बिठाकर प्रेम दे दिया उनको। तो लेकिन पृथु महाराज बुद्धिमान थे, तो पृथु महाराज ने बोला कि न काम ये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणं भुजासवः महत्तमांतर हृदय अन्मुखच्युतो। आपके दिव्य प्रेम महात्मा पुरुषों के हृदय में है और वो जब आपकी कथा लीला चेष्टाओं के वर्णन करते हैं तभी वो मधु का प्रवाह होता है उनके मुखारविंदों से, उस मधु को मधु का पान में करना चाहता हूं, ऐसे बोले। इसलिए मुझे करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों क्यों करोड़ों कान चाहिए उस कथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, ऐसे बताते हैं वो। तो ऐसे अनेक सुंदर श्लोक हैं। तो पृथु महाराज की चेतना यह था कि भक्तों के, जैसे जनक महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, कुलशेखर महाराज, ये सब लोग सुबह सुबह उठकर मंदिर में आना, मंगलारती अटन करना, दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, बैठकर सभा में बाकी सब मिनिस्टरों के साथ बैठकर कथा सुनना। अम्बरीश महाराज सुबह आते थे उनके असेंबली में, जब वो आते थे सब लोग खड़े हो जाते थे, ठाक ठाक ऐसे ऊपर जाकर सिंहासन में बैठते थे, सब लोग बैठ जाते थे। तो एक एक मिनिस्टर उठकर बोलता था कि मैं वाटर डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, सैनिटेशन क्लीनिंग के लिए क्या किया है, और लोगों के लिए, इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में एक एक कड़ा होकर अनाउंसमेंट करता था उनको, राजा को। राजा सुनते थे और मुस्कुराते थे, वेरी गुड वेरी गुड बोलते थे। बस सब लोगों का रिपोर्ट हो जाता था एक घंटे में, सबको बोलते थे शाबाश आप लोग अच्छा कर रहे हो, करते चलो, और सीधा मंदिर में चले जाते थे उसके बाद। तो दिन भर सब माना कृष्ण पदारविंद योर वचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनाशु, सब करते थे ऐसे। तो इस तरह वो थे राजा, लेकिन सिर्फ प्रेरणा देने वाले थे, लेकिन मिनिस्टर लोग बुद्धिमान थे उनके, सो सब सब करने वाले थे, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते थे। तो मिनिस्टर लोगों के अंदर रुचि है कुछ करने के लिए तो उनको लगाते थे करने में, और उनका रुचि था भगवान की भक्ति में, वो भक्ति में डूबे रहते थे। इस तरह दोनों का काम हो गया इस तरह। तो इस तरह एक अनासक्त राजा थे वो, लेकिन कृष्ण में आसक्त थे। इस तरह राज्य पदवी को भी स्वीकारा लेकिन बंधन में नहीं पड़ा वो अम्बरीश महाराज ऐसे। इस तरह युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज जैसे महात्मा पुरुषों के बारे में भागवत में प्रशंसा है, उनकी गुणगान किया गया है। तो इस तरह हाउ टू कैच द फिश विदाउट गेटिंग वेट, कैसे हम लोग इस दुनिया में बंधन में पड़े बिना कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाए, ये हो सकता है भक्ति मार्ग के द्वारा। भक्ति में जो जुड़ता है व्यक्ति भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखता है और बाकी सब चीज़ों को उसके बाद डालता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में अपने कर्तव्यों को आसानी से निभाएगा और जन कल्याण भी कर सकता है, खुद की भी कल्याण कर सकता है। लेकिन ये यति राजा की बात जो आ रहा है इधर, ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हम खुद की कल्याण करना हो तो हम राज्य पदवी स्वीकारना श्रेष्ठ नहीं है करके छोड़ कर गए हैं, ऐसे भी कुछ वर्णन है भागवत में। तो लेकिन ये इस तरह के वर्णन भी है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में भौतिक जिम्मेदारियों को जब दिया जाता है हमें, देर इज अ टाइम फॉर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन देर इज अ टाइम फॉर डिटैचमेंट। जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए एक टाइम है और अनासक्त होने के लिए टाइम है। जैसे धृतराष्ट्र को क्या चाहिए था, जिम्मेदारी स्वीकारना है नहीं तो छोड़ना है, छोड़ना था किसको, युधिष्ठिर महाराज को देना था, लेकिन वो आसक्त हो गया था अपने पदवी में, इसलिए वो गर्भ महामहल छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था वो, ऐसे इस तरह। लेकिन प्रियव्रत महाराज को क्या करना था, यू शुड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और बी डिटैच्ड, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनको करना था। तो गीता में भी भागवत में भी दोनों बताया गया है कि अभी अर्जुन जो था, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान रणे हन्युहु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हे कृष्ण, यह युद्ध भूमि में मेरे इतने रिश्तेदार आए हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता इन लोगों से, अच्छा कि मेरे आयुधों को नीचे डाल दूं, त्याग दूं और निरायुध पानी होकर इनके हाथ में, इन लोगों के सामने आकर मैं मर जाऊं, इनके द्वारा हत्या किया, ये लोग मेरे हत्या करे, इस तरह अर्जुन बोल रहा था। तो कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, अरे मूर्ख, तुम आयुधों को ले लो हाथ में, अभी लड़ने का समय है तुम्हारा, अभी छोड़कर छोड़ना छोड़ने का समय नहीं, अभी लड़ने का समय है। जब मैं बोलता हूँ गांडीव को पकड़ो तभी पकड़ो, जब मैं पोड़ूंगा बोलूंगा तुमको छोड़ो तभी छोड़ो उसको, तो तभी गांडीव को पकड़ा, अर्जुन लड़ाई किया, युद्ध होकर वो लोग जीत गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। उसके बाद भगवान ने वो शक्तिपात जो किया था उसको वापस ले लिया भगवान ने। जैसे अर्जुन बोलता है कि जो शक्ति था मेरे अंदर युद्ध भूमि में कौरव सेना को पराजित करने में, अभी वो शक्ति नहीं है मेरे पास, क्योंकि भगवान ने सोचा होगा कि वो शक्ति से मेरा गर्व बढ़ जाएगा, इसलिए भगवान ने वो ले लिया, इस तरह वो बताते हैं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, पहले स्कंद में, धृतराष्ट्र क्विट्स होम, उसके बाद पांडवास रिटायर टाइमली, उसके बाद परीक्षित भी रिटायर हो जाता है। इस तरह हर एक व्यक्ति एक एक करके रिटायर होते हैं, लेकिन रिटायर होने के पहले वो क्या करते हैं, पहले जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसके बाद रिटायर होते हैं। इस तरह हर एक चीज के लिए टाइम है। कब, अगर कोई नया नया मंदिर में ज्वाइन किया है, बोलता है कि प्रभु जी मैं रिटायरमेंट ले लूं अभी, अरे अभी ज्वाइन किया हो, अभी जिम्मेदारी लेने का टाइम है। कभी कभी कुछ लोग शास्त्र पढ़ने के बाद बजरानंदी बन जाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, इस तरह ज्यादा माला जपते हैं। अचानक एक भक्त था, बोल रहा 64 माला करूंगा रोज, क्यों प्रभु जी, इतने शुद्ध बनूंगा, इतने शुद्ध बनूंगा, सारे दुनिया आकर्षित हो जाएगा हमारे ऊपर। मैं बोला बड़ा डेंजर है तुम्हारे लिए, है दुनिया को आकर्षित करने के लिए तुम जपते हो, कृष्ण को आकर्षित करना चाहिए तुम, है ना। इस तरह एक भजनानंदी नहीं बनना चाहिए भक्तों को, बाहर जाना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना, किताब वितरण करना, स्कूलों में कॉलेजों में कंपनी में जाकर प्रचार करना, इस तरह पूरा खूब कठोर परिश्रम करना चाहिए। एक बार मायापुर में कुछ भक्त लोग आकर तमक्ष महाराज को बोले कि प्रभु जी को पूछो, हम लोग इस्कान में ज्वाइन किए 60s में, हमने ज्वाइन किया है, अभी 75 हो गया है, अभी लगभग 7-8 साल हमने सेवा कर ली है, अभी थोड़ा रिटायरमेंट लेकर हम मायापुर धाम में सेटल हो जाते हैं शांति से, नाम जपते जपते अंते नारायण स्मृति भगवधाम लौट जाएंगे, प्रभा जी से थोड़ा परमिशन पूछो। तो प्रभा जी समझ गए ये लोग क्या पूछने वाले हैं। तो प्रभा जी बोले, देखो तुम्हें जीवन भर जोरदार कठोर परिश्रम करना चाहिए, पसीना छूटना चाहिए, इतना परिश्रम करना चाहिए भगवान की सेवा में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्त का मतलब है यत्न करना चाहिए हमको। और प्रभा जी बोले, जब तुम बुढ़े हो जाओगे, 80 साल हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा, जब बूढ़ा हो जाते हो तभी छल भी नहीं पाते हो, बिस्तर में लेटे रहते हो, उस समय सिर्फ माला लेकर घुमाओ माला को, बस हरे कृष्ण बाकी कुछ हाथ पैर हिलने के लिए शक्ति नहीं, उठ नहीं पाओगे, क्या कर सकते हो, दाम में चले जाओ और माला करो। और प्रभा जी बोले, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक आई एम ओल्ड एनफ। प्रभा जी बोले, मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारे दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ, और तुम लोगों को जो करना सोच लो, बोला प्रभा जी ने। तो तमक्ष महाराज हंस पड़े, वापिस आकर सब भक्तों को बोला, प्रभा जी बोल रहे हैं कि वो खुद भी बूढ़े नहीं है इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोगों को प्रभा जी ने बोला, जब हम बूढ़े बनेंगे तभी हमें रुकना चाहिए। तो सब भक्त लोग अपने अपने मंदिर में चले गए, अपनी सेवा में रत हो गए, उसके बाद सेवा रत हो गए। तो बोलने का मतलब क्या है, तो युवक अवस्था में हमारे अंदर शारीरिक बल भी है, शक्ति है, मानसिक शक्ति भी है, बुद्धि में भी शक्ति है, हम श्लोकों को याद कर सकते हैं, शास्त्र को पढ़ सकते हैं, बाहर इधर उधर घूम घूम कर प्रचार करने के लिए शक्ति है। अगर किसी के पास शक्ति है लेकिन कठोर परिश्रम नहीं करता है भगवान के लिए, उसको बल कपटी बोलते हैं। बल कपटी का मतलब एकदम मोटा तंदुरुस्त शरीर है लेकिन नाचता नहीं कीर्तन में। इस तरह अगर किसी के पास धन दौलत बहुत ज्यादा है लेकिन खर्चा नहीं करता है भगवान की सेवा में, उसको धन कपटी बोलते हैं उसको। हमें धन कपटी भी नहीं बनना चाहिए, बल कपटी भी नहीं बनना चाहिए। तो जो भी दिया है भगवान हमारे पास, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस तरह के श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं, हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमको कुछ पदवी दिया जाता है, हचोड़ी का पदवी नहीं तो कोई भी पदवी दिया जाता है हमको, वो पदवी को स्वीकारते समय सावधानी से स्वीकारना चाहिए, उसका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही मेन लेसन हमें सीखने को मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके इतने वृद्ध अवस्था में 70 साल में भी वृंदावन में भजन करते समय वृंदावन को अपने हृदय में लेकर अमेरिका जाकर प्रचार किया उन्होंने। आज सारे दुनिया के लोग कृष्ण भावनामृत में रम रहे हैं, आनंद लुट रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, जैसे आपके कानपुर का मंदिर है, इतने बड़े राजमहल जैसे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर, अच्छे मंदिर बने हैं, हजारों लाखों भक्त जुड़ रहे हैं संस्था में। तो प्रभुपाद जी ने अपने ऐशोराम, अपने बहुत शांतिमय स्थिति जो वृंदावन में बिता, उसको त्याग कर अमेरिका जाकर ऐसे लोगों के सामने जाकर प्रचार किया उन्होंने, बहुत परिश्रम करते हुए, पसीना छूटा, जिसके कारण हम लोग अभी आनंद लूट रहे हैं। तो अगर हम पैसा, हम भी पसीना छूटेंगे, हम परिश्रम करेंगे, तो और अनेक लाखों लोग, करोड़ों लोग कृष्ण के भक्ति में जुड़ सकते हैं। इसलिए हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि बाई समवन्स प्रेयर आई एम एंजॉइंग माई स्पिरिचुअल लाइफ नाउ, नाउ आई विल प्रे एंड प्रीच बाई विच आई विल बेनिफिट अदर्स। सो हमारी पूर्वजों ने, आचार्यों ने, जैसे एक गांव में एक किसान था, वो भूमि को खोद कर कुछ नारियल का बीज लगा रहा था। वो तो कोई सिटी से आया हुआ व्यक्ति देखा उसको, बोला कि अरे मूर्ख, तुम्हारा ऑलरेडी 80 साल हो गया, तुम्हारा ये नारियल बड़े होने के पहले तुम मर जाओगे, कैसे तुम पानी पियोगे नारियल का। वो बोला ये मेरे लिए नहीं, मेरे बेटों के लिए, मेरे पौत्रों के लिए, बोला उसने। इस तरह वो हमारे वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है कि हम खुद के लिए ही नहीं करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। तो इस तरह श्रीमान देवकी नंदन प्रभु बहुत बहुत सालों के पहले मुझे इधर बुलाया था एक बार जमीन दिखाने के लिए। तो इधर जब आया था मैं, पूरा कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड वॉल था, लेकिन कुछ नहीं था इधर, सिर्फ गौशाला था उस समय, और एक छोटा आपके वो मंदिर था ना, वो छोटा टेम्पररी स्ट्रक्चर था कुछ ऐसे, बहुत कम भक्त थे भी इधर। तो लेकिन प्रभु जी इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेकर, उनको पूरा विश्वास था कि इसको हम डेवलप करेंगे और अनेक हजारों लोग आकर जुड़ेंगे इसमें। तो सालों साल लगकर इस मंदिर को डेवलप किया उन्होंने, इतना भव्य मंदिर है इधर। मैंने सुना कि सारे एशिया में सेकंड बिगेस्ट मंदिर है मायापुर के बाद। तो मायापुर जो हेडक्वार्टर है उसके बाद इतना बड़ा प्रॉपर्टी, 14 acre प्रॉपर्टी में इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं है इस कान में। तो इस तरह हमारे वरिष्ठों ने बहुत परिश्रम किया है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोगों को जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिया गया है उसको अच्छी तरह निभाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इस दुनिया में आते हैं, कुछ समय के लिए टिकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चले जाने के पहले कुछ ना कुछ ऐसे करके जाना चाहिए जो यशस्वी हो और बाकी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक हो। इस तरह हमें कुछ ना कुछ योगदान देकर निकल चलना चाहिए इस दुनिया से, तभी हम भगवत धाम लौट जाएंगे। इस तरह हम जिम्मेदारियों को निभाते समय सतर्क होकर भगवान के पदकमलों में, इनको भी बोला प्रियव्रत को, ब्रह्मा जी ने बोला हे प्रियव्रत, तुम अपने आप को भगवान के दो पदकमलों के बीच में रखो, रखकर ये तो त्वदीय चरणाम भुजकोश गंधम जिग्रंति कर्ण विवरैश्रुति बात नीतम भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषाम नापैशिनात हृदयाम बुरुहात्स्वपुंसाम। ये श्लोक बोलता है कि भगवान के दो पदकमलों के बीच में अपने आप को जो व्यक्ति रखता है, लेकिन वो कैसे रख पाता है, भगवान की कथा श्रवण करता है अपने कानों से, ये किसके उससे सुन सुन कर भगवान के पदकमलों की सुगंध उसको सूंघने को मिलता है, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह भक्तिया गृहीत चरण, गृहीत चरण, भगवान के पदकमलों को पकड़ लेना चाहिए, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जब भगवान के पदकमल हमारे हृदय में रहेंगे तो हृदय पिघलता हुआ, भक्ति से पिघला हुआ हृदय होगा, उस तरह के भक्ति भावना के साथ राज्य को चलाना चाहिए एक राजा को, ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि को आदर दे सम्मान देते हुए, भगवान को हर दिन झुकते हुए, भगवत भक्ति में डूबे हुए, और सब प्रजा को भगवान के बच्चों के रूप में देखते हुए, सब तरह के भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करते हुए, और अनासक्त अवस्था में अपने आप को रख कर अपने चित्त को भगवान के लीला चेष्टाओं में रमण करते हुए एक राजा को अपने राज्य को चलाना चाहिए। ऐसे जो चलाएगा उसके राज्य राम राज्य होगा। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच।